किस्सा कहानी बाय निधि बासु पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। ये स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आई हूँ मैं निधि बासु। इस पॉडकास्ट में सुनिए अपनी पसंदीदा नए पुराने लेखकों द्वारा लिखी दिल छूने वाली हिंदी कहानियाँ केवल स्पॉटिफाई पर। फॉलो बटन दबा के मेरा पॉडकास्ट फॉलो जरूर करें। आइए देखें किस्मत के ताने बाने में रिश्तों के सिरे कैसे सुलझते हैं। सरताज अली रिजवी की लिखी इस कहानी में, जिसका नाम है बदलते रिश्ते। आज के एपिसोड में मैं निधि बासु आपको सुनाती हूँ इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। पानी पीते पीते अंकिता की नजर ढाबे पर बैठे लोगों से होती हुई ढाबे के कैश काउंटर पर पड़ी, जहां वो पोस्टर देखकर चौंक पड़ी, क्योंकि पोस्टर उसी की गुमशुदगी का था। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसके पापा इतनी जल्दी उसकी गुमशुदगी के इश्तेहार लगवा देंगे। डर के मारे अंकिता ने अपना चेहरा स्कार्फ से छुपा लिया। जब वनराज ड्राइविंग सीट पर बैठा तो उसने वो पोस्टर उसे भी दिखाया। वनराज ने उसे अपना चेहरा ढकने के लिए कहा और जीप बस स्टैंड की तरफ दौड़ा दी। बस स्टैंड पर दर्जनों पुलिस वालों को देखकर अंकिता के हाथ पैर सुन्न हो गए। वो वनराज से मिन्नतें करती हुई बोली,
सर प्लीज वापस जंगल चलें, वरना दिक्कत हो जाएगी।
वनराज ने किसी रोबोट की तरह अंकिता का कहा मान लिया और उसे लेकर वापस अपने बंगले पर आ गया।
अब क्या करोगी? उसने गुमसुम बैठी अंकिता से पूछा।
आप प्लीज वाईफाई ऑन कर दीजिए, मैं करण को नेट कॉल करूंगी।
तुम रुड़की जाने वाली बस में बैठ गई अंकी?
नहीं करण, पापा ने मेरे नाम के पोस्टर जगह जगह लगवा दिए हैं। बस स्टैंड पर भी पुलिस तैनात थी, मैं बस पकड़ती तो खुद भी पकड़ी जाती।
अरे यार, मुंह पे स्कार्फ लगा के निकल जाना था।
और पकड़ी जाती तो?
अब तुम क्या करोगी अंकी?
मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। एक काम करो करण।
हाँ बोलो।
तुम अपनी दीदी को यहाँ भेज दो, वो मुझे अपनी कार में ले जाएंगी।
नहीं अंकी, मैं दीदी को रिस्क में नहीं डाल सकता।
और मुझे? मुझे तो तुम रिस्क में डाल चुके हो करण। यहाँ वनराज सर ना होते तो पता नहीं क्या होता मेरा। तुम मुझे ये बताओ कि तुम कब आ रहे हो?
देखो, परसों तक तुम्हारा वीजा कंफर्म हो जाएगा, तो मैं उसके एक दिन बाद यहाँ सब कुछ सेटल करके निकलूंगा।
और तब तक मैं कहाँ रहूंगी?
तब तक तुम यहीं रहो अंकी, वनराज सर से मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा।
नहीं करण, मैं उनसे बात कर लूंगी।
अंकिता ने वनराज से उसके बंगले पर चार दिन और रुकने के लिए कहा तो वनराज ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। उसी वक्त वनराज का नौकर रणजीत भी आ गया और वहां लड़की देखकर हैरान रह गया। वनराज उसे अंकिता का ख्याल रखने की हिदायत देकर जंगल की पेट्रोलिंग पर निकल गया। किचन में खाना बनाते रणजीत से अंकिता ने पूछा,
यहाँ और कौन आता जाता है?
मैडम, यहाँ सर, मेरे और घायल जंगली जानवरों के अलावा कोई नहीं आता।
तो यहाँ क्या जानवरों का अस्पताल है?
जानवरों का अस्पताल तो नहीं है, मगर साहेब आपसी लड़ाई में घायल या शिकारियों के पंजे से घायल जानवरों को यहाँ लाते हैं और तब तक यहीं रखते हैं जब तक जानवर ठीक नहीं हो जाते।
तुम्हारे साहब शादी क्यों नहीं कर लेते?
मैंने पूछा तो साहब ने नहीं बताया, पर एक बार साहब के माँ बाबा आए थे, तब पता चला कि साहब कॉलेज में एक लड़की से एक तरफा प्यार कर बैठे। जब नौकरी लगने के बाद रिश्ता भेजा तो लड़की ने साहब के सांवले रंग की वजह से साफ इनकार कर दिया।
तुम ना रणजीत, मेरी कहानी के बड़े बड़े होर्डिंग बनवा के हर जगह लगवा दो।
वनराज न जाने कब से आकर उनकी बातें सुन रहा था।
100 बार समझाया है तुम्हें, मानते ही नहीं।
रणजीत सन्न रह गया और अंकिता चुपचाप अपने कमरे में आ गई। मगर उसे वनराज का रणजीत को इस तरह डांटना बहुत बुरा लगा। लंच करते वक्त अंकिता ने उससे कहा,
आपको ना रणजीत को इस तरह डांटना नहीं चाहिए था।
सही कहती हो तुम,
मगर हर आदमी की एक दुखती रग होती है जिस पे उंगली रखते ही वो बिलबिला उठता है। बीते हुए वक्त ने मेरे दिल पर ऐसा जख्म दिया है जो कि भरता नहीं।
जी सही कहा आपने, वो जरूर ना समझ होगी, वरना आपके रिश्ते के लिए तो कोई भी ना नहीं कहेगा।
करते हैं अंकिता, करते हैं लोग। यह दुनिया शायद खूबसूरत लोगों के लिए ही है।
पर आपसे किसने कहा आप खूबसूरत नहीं हैं? आप इतने नेक और प्यारे इंसान हैं कि दिल में अपने आप समा जाते हैं।
अगर मैं करण से कमिटेड ना होती तो आपसे शादी कर लेती। ना जाने किस रौ में अंकिता कहती चली गई, मगर जब वनराज को अपनी तरफ घूरते देखा तो सिटपिटा गई। वनराज कुछ पलों तक उसे घूरता रहा, फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। तब अंकिता की जान में जान आई।
आप हंसते भी हैं, ये देखकर अच्छा लगा।
दोपहर ढलने पर वनराज जब पेट्रोलिंग के लिए निकला तो अंकिता भी जंगल देखने के लिए उसके साथ आ गई, जहां एक छोटे से पोखर के किनारे उसने जीप रोक दी।
यहाँ क्यों रुक गए?
मेरा एक दोस्त आने का वादा करके गया है, इसलिए रुक गया हूँ। फिर उसने झाड़ियों की तरफ मुंह करके आओ आओ कहा और अंकिता ये देखकर हैरान रह गई कि एक बारह सिंगा जीप की तरफ दौड़ कर आया। वनराज तब तक जीप से उतर चुका था। बारह सिंगा वनराज के इर्द गिर्द घूमकर उसे चाट रहा था। फिर वनराज ने जीप की पिछली सीट से टोस्ट का पैकेट निकाला और एक एक करके सारे टोस्ट उसे खिलाकर कहा,
अब मैं जाता हूँ, तुम भी जाओ।
वनराज के ड्राइविंग सीट पर बैठते ही बारह सिंगा झाड़ियों में ओझल हो गया।
इसके साथ आपकी दोस्ती कैसे हुई?
ये शिकारियों के लगाए शिकंजे में फंस गया था। इसका अगला पैर जख्मी हो जाने की वजह से ये चल नहीं पा रहा था। अगर इसे यूं ही छोड़ देते तो किसी जानवर या शिकारी का निशाना बन जाता, इसलिए मैं इसे कॉटेज पर ले आया। वहाँ ये 15 दिनों तक रहा। इसका घाव भी ठीक हो गया और हमारी दोस्ती भी हो गई। वैसे इस जंगल में मेरे कई दोस्त हैं। एक भालू भी है। जब वो कुछ ही हफ्तों का था तब उसकी माँ को बघेरे ने मार डाला था। फिर वो भालू मेरे कॉटेज पर ही रहा। अब भी वो 10-15 दिनों में एक बार आता है मेरे पास शहद की दावत उड़ाने।
आपको इन जानवरों से डर नहीं लगता?
शुरू में लगता था, मगर फिर मैंने इनके साथ रहना सीख लिया। और वैसे भी सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर तो आदमी होता है। वो यहाँ नहीं है, इसलिए मैं खतरे से बाहर हूँ।
वापस आते आते वनराज ने कई जानवरों से अंकिता को मिलवाया। अंकिता जब शाम को लौटी तो उसके दिल में वनराज के लिए इज्जत और बढ़ चुकी थी। अब अंकिता भी वनराज की जिंदगी को समझ रही थी। उसे अफसोस होता कि गहरे रंग का होने की वजह से कोई किसी को कैसे मना कर सकता है। वनराज भी जब पेट्रोलिंग के लिए जाता तो वो उसके साथ जरूर जाती। वो जंगल को समझ रही थी और वनराज को भी, बल्कि वो उसके अंदर छिपे एक नेक दिल इंसान की नेकी की कायल हो गई थी। उस दिन जब एक खबरी ने जंगल में शिकार की खबर दी तो वनराज अकेला ही निकल गया। वापस आने में उसे देरी हो गई। जब वो वापस लौटा तो अंकिता का बदहवास चेहरा देखकर घबरा गया। वो उसके आते ही फट पड़ी।
सुपरमैन समझते हैं अपने आप को, जो शिकारियों से भिड़ने अकेले चले गए? आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता?
तुम्हारा जो भी होना है वो करण के साथ होना है पागल लड़की, और ये मेरे जॉब का हिस्सा है। मुझे तो किसी दिन किसी शिकारी की गोली या किसी जंगली जानवर के साथ अंजाम को चला ही जाना है।
नहीं 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 नहीं, ऐसा क्यों कहा तुमने? ऐसा कभी नहीं होगा।
अंकिता को न जाने क्या हुआ, वो वनराज के सीने पर मुट्ठियों से मारने लगी और रोते रोते वो वनराज के गले लग गई।
मैडम, अगर मेरी शर्ट गीला करने का प्रोग्राम खत्म हो गया हो तो कुछ खा पी लिया जाए, बंदा दिन से भूखा है।
फिर दोनों ने खाना खाया
और वनराज के मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट करके अंकिता करण से बात करने लगी और थके मांदे वनराज को झपकी आ गई। अचानक अंकिता की तेज आवाज में रोने की वजह से वनराज की नींद उचट गई। उसने अंकिता के मुंह से अपना नाम सुनने के बाद उसकी बात सुनने की कोशिश की। वो तेज आवाज में बोले जा रही थी,
तुम्हारी दीदी ने क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने का जिम्मा ले रखा है? वो तो शुक्र मनाओ कि वनराज सर नेक आदमी है, वरना मेरा क्या अंजाम होता? तुम वहाँ पर ऐश से हो, यहाँ जो मैंने झेला है ना करण, वो मैं ही जानती हूँ।
तुम कहना क्या चाहते हो करण? अंकिता अपनी ही धुन में कहती चली गई।
मुझे ट्रेन में आने से पहले क्या पता था कि आगे क्या क्या होना है? मैंने घर बार सब तुम्हारे लिए छोड़ा, जंगल में इसलिए पड़ी हूँ ताकि तुम मुझे ले जाओ, और तुम इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर, वो भी वनराज सर जैसे नेक इंसान पर।
वनराज की समझ में पूरा मामला आ रहा था, मगर इस वक्त उसने अंकिता को अकेला छोड़ देने में ही भलाई समझी, क्योंकि कभी कभी इंसान के दर्द का बेहतरीन इलाज तन्हाई होती है। सुबह जब वो अंकिता के कमरे में चाय लेकर गया तो उसकी उजड़ी हुई हालत देखकर समझ गया कि वो रात भर रोती रही है। फिर भी उसने पूछ ही लिया,
मेरी हालत उस मुसाफिर की तरह हो गई है जिसका एक कदम हवा में है और दूसरे कदम के नीचे की जमीन खींच ली गई है। सर, सर करण को मेरे चाल चलन पर शक है।
लाओ, मैं करण से बात करके उसे समझाता हूँ। अंकिता का नंबर करण ने ब्लॉक कर दिया था, तो वनराज ने अपने फोन से उसे कॉल लगाया। करण ने फोन उठाया तो वनराज ने कहा,
मैं वनराज बोल रहा हूँ। बोलिए। करण देखो, अंकिता का क्या हाल हो रहा है तुम्हारे इल्जाम से।
व्हाट इल्जाम वनराज? हर वक्त सिर्फ तुम्हारा नाम इसकी जबान पे। वनराज सर ने ये कहा, वनराज सर ने वो किया। वनराज साहब, अंकिता आपको इत्तेफाक से मिली, मगर अब ये जंगल में आपके साथ रहना चाहती है। मेरी बहन के पास जाने में 100 बहाने, मैं सब समझता हूँ। अब फोकस में तो आप और अंकिता हैं, मैं तो कहीं हूँ ही नहीं।
ऐसा नहीं है करण, समझने की कोशिश करो।
सब सोच समझ लिया है, मैं हट गया। आप रखिए अंकिता को अपने पास और मनाइए जंगल में रंग रलियां, और दोबारा मुझे फोन करने की कोशिश ना करें।
हेलो, हेलो करण,
वनराज पुकारता रहा, मगर करण फोन काट के वनराज का नंबर ब्लॉक कर चुका था। अंकिता करण को गलतफहमी हुई है। चलो मैं गाड़ी निकालता हूँ, हम उसकी बहन के पास चलेंगे और सारा मामला साफ करेंगे।
क्यों जाएं हम, जब उसे ही यकीन नहीं तो बहन को भरोसा दिलाने का क्या फायदा?
फिर तुम अब क्या करोगी?
कुछ नहीं सोचा, पर आप पर बोझ नहीं बनूंगी, ना ही अपने घर जाऊंगी।
एक बात कहूं अंकिता?
जी।
तुम अपने घर चली जाओ।
वहां जाकर क्या करूंगी सर? जब निकली थी तब कुछ सोचा नहीं, अब सोचती हूँ तो लगता है मम्मी डैडी को कितनी तकलीफ पहुंचाई है मैंने।
तुम घर जाओ, वो तुमको कुछ नहीं कहेंगे अंकिता।
आप इतनी गारंटी से कैसे कह सकते हैं?
वो ऐसे कह सकता हूँ कि मैंने तुम्हारी फैमिली से उस दिन कांटेक्ट किया था जब हम बस स्टैंड से वापस आए थे। मैंने ही उनको यहाँ आने से रोक रखा था। वो तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हैं। वो माँ बाप हैं तुम्हारे, और माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है। वनराज ने अंकिता को उसके घर पहुंचा दिया। वहां पहुंचने के बाद अंकिता की जिंदगी बदल गई। अब उसने जिद छोड़ दी, वक्त बिताने के लिए अपने डैडी के ऑफिस जाने लगी थी। उसकी छोटी बहन पारुल की भी शादी हो गई, मगर अंकिता के लिए अब कोई रिश्ता या तो आता ही नहीं था, अगर आता भी था तो बड़ी उम्र या एक दो बच्चों के बाप जिनकी बीवियां नहीं होती उनका आता, जिनसे शादी कराना अंकिता के मम्मी डैडी चाहते नहीं थे। उस दिन भी वो ऑफिस गई। लंच में मम्मी आई और अंकिता को साथ ले गईं। फिर वो अंकिता को लेकर बाजार गईं
कुछ स्पेशल कपड़े खरीदने के लिए। हालांकि अंकिता मना कर रही थी। आखिर में मम्मी उसे पार्लर ले गई। अंकिता को समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मामला तब खुला जब मम्मी ने शाम को बताया कि लड़के वाले कल देखने आ रहे हैं, तो अंकिता ने तुनक कर कहा,
मम्मी रहने दो ना मुझे, मैं घर में ही रह के डैडी का हाथ बटाऊंगी, नहीं मन करता अब शादी करने का।
मम्मी ने सिर पे हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, पगली कहीं की, राजा की भी लड़की होती है ना, तो भी उसे ससुराल तो जाना ही होता है। अगले दिन सुबह से ही सरगर्मी बढ़ी हुई थी। दोपहर को 2 बजे लड़के वाले आए तो अंकिता अपने कमरे में ही थी। मम्मी उसके कमरे में आई और काफी मिन्नतों के बाद वो तैयार हुई। लड़के वाले बैठे थे, अंकिता भी आई, मगर अंकिता ने ना तो लड़के और ना ही लड़के के घर वालों को देखा। वो बस सिर झुकाए बैठी रही। फिर लड़के के पापा ने कहा,
हमें इन दोनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि ये एक दूसरे से कुछ बात कर सकें।
सबके जाने के बाद भी अंकिता ने सिर नहीं उठाया, बस यूं ही बैठी रही।
शादी के बाद माँ बाबा के साथ घर में रहूंगी या मेरे साथ जंगल में?
ये सुन के अंकिता चौंक उठी। उसे आवाज पहचानी सी लगी। उसने सिर उठा के देखा तो सामने वनराज था।
तो एक बार जंगल में मेरी मदद करने के बाद अब फिर मुझ पर दया करने के लिए मेरा हाथ मांगने आ गए।
वनराज दया सिर्फ जख्मी जानवरों पर करता है। मैं जंगलात का रहने वाला हूँ, प्यार भरे डायलॉग से अपना प्यार नहीं जता सकता। मगर ये सच है कि तुम्हें मैं आंखों में ख्वाब की तरह रखूंगा। मैं वादा करता हूँ अंकिता कि अगर तुम्हारी तरफ गर्म हवा भी आएगी तो पहले मुझसे टकराएगी। मैं सोख लूंगा तुम्हारे अंदर फैली उदासी, अंधेरा और आंसू, और भर दूंगा उसमें सुकून और खुशी।
आप मुझे कब से प्यार करने लगे वनराज? ये प्यार नहीं, दया है।
पागल लड़की, जिस दिन से तुम्हें देखा है उसी दिन से प्यार करने लगा हूँ तुमसे। वो करण की वजह से मैं चुप रहा। मैं उसे सोशल साइट्स पे इसलिए फॉलो करता रहा ताकि जान सकूं अगर वो तुम्हारी तरफ पलटना चाहे। मगर पिछले हफ्ते ही उसने किसी ऑस्ट्रेलियाई लड़की से शादी कर ली। बस तभी से मुझे लगा कि मुझे तुम्हारे लिए रिश्ता भेजना चाहिए।
मगर क्या आपकी मर्दानगी ये बर्दाश्त कर पाएगी कि आपकी बीवी का उसकी पिछली जिंदगी में किसी के साथ इतना गहरा प्यार था?
मैं सब जानता बूझता हूँ और मुझे तुम्हारी गुजारी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। तुम कल क्या थी ये मायने नहीं रखता, तुम आज क्या हो ये मेरे लिए मायने रखता है।
अंकिता के दिल में गुजरा हुआ वक्त तराजू के 2 पल्लों की तरह हो गया था, जिसमें एक तरफ वो करण था जिसने अपनी बचपन की मोहब्बत को शक की वजह से दूर कर दिया, दूसरी तरफ था वनराज जो सब कुछ जानते बूझते अंकिता को अपनाना चाहता था। वनराज ऐसा इंसान था जिसके सामने सिर और दिल दोनों झुकाए जा सकते थे। इसके अलावा अंकिता के घर वाले भी वनराज के लिए राजी थे, इसीलिए वनराज वाला पल्ला झुक रहा था, और जिससे अंकिता के एहसासात के दायरे में शामिल हो रहा था वनराज। एकाएक अंकिता की आंखों में वनराज की तमाम तर खूबियां जुगनू की तरह चमकने लगी, और उन जुगनुओं की रोशनी में जिंदगी के रंग भी शोख होकर दमकने लगे। अंकिता शायद देर तक इसी हाल में रहती अगर वनराज उस सन्नाटे की झील में आवाज का कंकर ना मारता तो। तुम मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? वनराज ने कुछ देर रुककर चुप्पी तोड़ते हुए शोखी से पूछा, 2 शर्तें हैं मेरी।
शर्तें? कैसी शर्तें?
वनराज ने फिक्रमंद होते हुए पूछा। पहली शर्त ये कि दिन में एक बार मुझे पेट्रोलिंग पर जरूर लेकर चलोगे, और दूसरी ये कि कभी रणजीत को नहीं डांटोगे।
मंजूर है बाबा, दोनों शर्तें मंजूर हैं।
आप सुन रहे थे सरताज अली रिजवी द्वारा लिखी कहानी बदलते रिश्ते का दूसरा और अंतिम भाग। वाचन था निधि बासु का। आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स या फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए किस्सा कहानी बाय निधि बासु केवल स्पॉटिफाई पर, और फॉलो बटन दबा के मेरा पॉडकास्ट फॉलो करना ना भूलें।